आज के दौर में हम देखते हैं तो सुन्नत की एक बिल्कुल दूसरी तारीफ है जो हमें नज़र आती है। गुफ्तगू का आगाज़ मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि इसकी क्या वजह है आपकी नज़र में कि जब माजी का एक इल्म है, माजी के अंदर एक रिवायत मौजूद है, उसके अंदर किताबें मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े नाम आपने इमाम शाफ़ी का हवाला दिया, इब्न अब्दुल बर का हवाला दिया, उनकी लिखी हुई चीज़ें मौजूद हैं, तो ये क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो एक मज़हबी तसव्वुरात हैं, मज़हबी रिवायत है, वो इन तमाम चीज़ों से यकसर मुख्तलिफ एक बात कह देती है? तो क्या वो जो पुराना माजी का इल्म और तुरास है उसके साथ वो तमस्सुक, उसके साथ वो ताल्लुक बाकी नहीं रहा, या फिर कोई और वजह है आपकी नज़र में इसकी?
मेरे नज़दीक उसकी बहुत बड़ी वजह ये हुई कि जब रिवायतों के ज़खीरे से लोग आशना हुए और उन्होंने उनको किताबों की सूरत में मरतब करना शुरू कर दिया और रिवायतों में उन्होंने जगह जगह उन्हीं चीज़ों का ज़िक्र देखा जिन्हें हम सुन्नत से ताबीर करते हैं, तो ये ख्याल बाज़ लोगों ने करना शुरू कर दिया कि अब ये सनद के साथ जो चीज़ हमारे पास आ गई है, दूसरी सदी में आई, तीसरी सदी में आई, चौथी सदी में आई, इसकी बाकायदा किताबें मरतब हो गई हैं, तो जब कोई आदमी ये सवाल करेगा कि सुन्नत क्या है, तो इन किताबों की तरफ मुराजत के लिए उसको कह देना चाहिए। ये सहूलत जैसे ही लोगों को मैसर हुई तो आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा मदरसा फ़िक्र पैदा होना शुरू हो गया। असल में वो मदरसा फ़िक्र है जो ये बात कहता है।
अच्छा,
अगर आप खालिस इल्म की रवायत में जाएंगे, इस वक्त भी जो लोग हमारी फ़िकी रवायत के अमीन हैं उनसे बात करेंगे, इसी तरह उलमाए उसूल की किताबें पढ़ेंगे, तो आपको वही बात नज़र आएगी। लेकिन आम आदमी की सतह पर जब बात की जाती है तो एक हनफी आलिम भी, एक शाफ़ी आलिम भी बाज़ औक़ात लोगों को समझाने के लिए कुरान की आयत सुना देगा, कोई हदीस सुना देगा। तो ये आमतुल नास के अंदर बना हुआ एक तासुर है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि एक तबका फ़िक्र का ये नुक्ता नज़र बन गया। जहाँ तक मुसलमानों की इल्मी रवायत का ताल्लुक है, माजी में भी उसके अमीन यही बात कहते रहे हैं और हाल में भी उसके अमीन यही बात कहते हैं। कोई ऐसी आपको उसूल की किताब नहीं मिलेगी जिस पे कुरान मजीद के बारे में ये बात न कही गई हो कि ये नकल मुतवातिर से हमको मिला है।
ठीक,
इसी तरीके से ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, ये सब की सब किन लोगों की हैं? यानी ये वो लोग हैं कि जिनके ऊपर मुसलमानों की इल्मी रवायत एक लिहाज से कायम हुई है। ये यहाँ कोई अपना ख़ास मसलक नहीं बयान कर रहे, बल्कि मुसलमानों के यहाँ ये रवायत जिस तरीके से बयान होती है उसको अपनी किताबों में सब्त कर रहे हैं।
ठीक,
यानी ये बता रहे हैं कि हमारे पास दीन का इल्म किस तरह से पहुँचा है। और उसमें आपने देखा कि इमाम शाफ़ी ने कितनी वजाहत से ये कहा कि ये वो इल्म है जिससे कोई आकिल बालिग नावाकिफ हो ही नहीं सकता। यानी मुसलमानों के यहाँ ये आम इल्म है, ये बात वो जाहिर है उस पहले दौर में खड़े हुए कह रहे हैं, आम इल्म है, ये उनके अवाम का इल्म है, ये उनके इल्म की वो रिवायत है जो नकलुल काफा लिल काफा के तरीके पर सारे मुसलमान इसको पहुँचा रहे हैं। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि इसमें ना कोई तनाज़ो का इम्कान है, ना इसमें किसी तावील की गुंजाइश है, ना आप इससे इन्हराफ कर सकते हैं, ना इसमें बहस का कोई सवाल है। इसी तरीके से कुरान मजीद का कोई इनकार कर दे या इस सुन्नत का इनकार कर दे, तो इब्न अब्दुल बर आपको ये बता रहे हैं कि ये ऐसी हुज्जत है जिसके बारे में दो राय नहीं हो सकती, जबकि रवायात हदीस की किताबें वो तो मारज़ बहस में रहती हैं। यानी एक आदमी एक बात का इनकार करता है, दूसरा एक बात का इकरार करता है, तो ये अवाम में ये बात पहुँच गई और उसमें लोगों को ये बड़ी सहूलत भी महसूस होती है, कहाँ से लूँ, आपने किसी हदीस की किताब का हवाला दे दिया। इसलिए मैंने अर्ज़ किया था कि ये आमियाना बात है, इल्म की दुनिया इससे बिल्कुल नावाकिफ है। इल्म में मुसलमानों का पूरा इल्म अपनी असल और असास में इजमा और तवातुर ही से मुंतकिल हुआ है, और इसी को सब अहले इल्म बयान भी करते हैं, ये कहते भी हैं कि ये इसी तरीके से हमको मिला है। बहस सिर्फ इतनी रह जाती है कि अखबार अहाद से, जिनको आप हदीस कहते हैं, जो कुछ मिला है क्या उस पर लफ्ज़ सुन्नती का इतलाक करना चाहिए क्योंकि वो भी रसूलुल्लाह से मिल रहा है, या किसी और लफ्ज़ का इतलाक करना चाहिए, ये बहस हम आगे चल के करेंगे। लेकिन यहाँ ये बताना मकसूद था कि ये वो बात है कि जो मुसलमानों की इल्मी रवायत में उनकी तुरास में पूरी तरह मौजूद है, ये कोई अजनबी बात नहीं है, इसी को मैंने बताया है इस ज़माने में और ये समझाने की कोशिश की है, बल्कि इससे आगे बढ़कर ये बात कही है कि ये दोनों की दोनों चीज़ें एक ही वक्त में रसूलुल्लाह सल्लम की तरफ से जारी की गई हैं।
ٹھیک،
یعنی جیسے ہی آپ کو نبوت ملی تو جس طرح آپ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور آپ نے اس کو لوگوں کو پڑھ کے سنانا شروع کیا، اسی طرح جو دین ابراہیمی کی روایت آپ کے پس منظر میں موجود تھی اس کو آپ نے اپنے صحابہ میں جاری کرنا شروع کر دیا.
درست.
اور یہ روایت، کیونکہ قرآن تو اجزاء میں نازل ہوا، یعنی ایک سورہ نازل ہو گئی، دوسری سورہ نازل ہو گئی، وہ 23 سال میں جا کر پایا تکمیل کو پہنچا. سنت تو جاری کر دی گئی، یعنی نماز لوگوں نے پڑھنا شروع کر دی، روزے لوگوں نے رکھنا شروع کر دیے، تو یہ قرآن مجید سے مقدم ہو گئی. یعنی گویا رسالت پا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تصویب پا کر یہ قرآن سے بھی پہلے مسلمانوں میں جاری ہو گئی، شائع و ضائع ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا ایک موقع پر ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ لوگ عام طور پر قرآن مجید کھولتے ہیں
جی.
اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ رمضان کے روزے سورہ بقرہ کی اس آیت میں فرض کیے گئے ہیں جس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
جی.
یہاں سے ہوتی ہے. میں نے بتایا آپ کو تحلیل کر کے کہ روزے اس سے پہلے اور رمضان کے روزے فرض ہو چکے ہیں. خود اس آیت ہی سے آگے جا کے معلوم ہو جاتا ہے
جی.
قرآن مجید جو چیز ان پر فرض ہو چکی ہے، جس کو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کا ذکر کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ روزے تم پر کوئی اجنبی چیز نہیں ہے جو فرض کر دیے گئے ہیں. پہلی امتوں پر بھی یہ اسی مقصد سے فرض کیے گئے تھے. پھر اس کے بارے میں کچھ احکام بتاتا ہے. پھر یہ سوال جب سامنے آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے کیوں منتخب کیا گیا ہے، تو اس کی حکمت بتاتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے. تو اصل میں یہ بات قرآن مجید میں بھی سنت پہلے جس چیز کو جاری کر چکی ہے اس کے اعادے کے طور پر آئی ہے. یہی صورتحال حج کی ہے، یہی صورتحال عمرے کی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاری کرتے ہیں، اور پھر قرآن مجید بھی اگر کسی موقع پر بیان کرنا موضوع سمجھتا ہے تو بیان بھی کرتا ہے، اس کی تاکید بھی کرتا ہے، اس سے متعلق کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو وہ بھی کہتا ہے. یہی صورتحال آپ کو پورے اسلامی علم میں ملے گی.